सांझवटना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
सुदामा के प्यारे घनश्याम, केवट के प्यारे श्री राम, झूठे बेर तूने शबरी के खाए, केवट सुदामा हम बन नहीं पाए, सच्चे जीवन का दो वरदान।
श्री साई रामा, जय साई रामा, श्री साई रामा, जय साई रामा।
परतीपुरी के पावन साई, परतीपुरी के पावन साई, सत्य प्रेम की राह बताई, गाते चलो हरि नाम।
श्री साई रामा,
की बात है। एक रत्नाकर नाम का डाकू था, वह वन में जाकर आते जाते राहगीरों को लूट लेता, उनके धन संपत्ति हड़प लेता था और उसी से अपनी जीविका चला रहा था। एक दिन नारद मुनि एक ऋषि के वेश में उसी वन से गुजर रहे थे, ये डाकू सामने कूद कर आ गया। बोला, हे ऋषि, जो भी धन संपत्ति तुम्हारे पास है मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऋषिवर जो नारद मुनि थे बोले, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? डाकू रत्नाकर बोला, मैं अपनी जीविका इसी से चलाता हूं, यही मेरा काम है। ऋषि ने उसे समझाया, बेटा तुम पाप कर रहे हो, इसको पाप बोला गया है। डाकू पढ़ा लिखा तो था नहीं, ज्यादा ज्ञानी नहीं था, उसको पाप और पुण्य की परिभाषा भी नहीं मालूम थी। लेकिन डाकू को लगा कि ये ऋषि मेरे को बातों में उलझा रहा है, ये पाप पुण्य का पाठ पढ़ा रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। डाकू बोला, ऋषिवर ये सब बातें यहां रहने दो, मेरे को अपनी धन संपत्ति दो और आगे बढ़ो। ऋषि ने फिर समझाया, बेटा तुम जब पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? तुम जानते हो इस पाप का फल क्या होगा, तुम्हें नरक में जलना पड़ेगा, वो अगले जन्म में ना जाने तुम्हें क्या सहना पड़े। पाप पुण्य की परिभाषा के साथ साथ कर्म क्या है, कर्म किस प्रकार से लौट के आपके पास वापस आता है, ये कथा भी, ये कहानी भी, ये थ्योरी भी, ये अंडरस्टैंडिंग भी नारद मुनि ने जो ऋषि के रूप में थे रत्नाकर डाकू को दी। दो पल के लिए रत्नाकर असमंजस में पड़ गया, क्या वाकई ये कर्म होते हैं, क्या वाकई अगले जन्म में मुझे ये कर्म भोगने पड़ेंगे, मेरे पर पीड़ा आएगी, समस्याएं आएंगी, संकट के बादल मंडराएंगे। फिर सोचा, जब मैं ये सारा काम घर वालों के लिए करता हूं, अपने माता पिता के लिए करता हूं, पत्नी के लिए करता हूं, बच्चों के लिए करता हूं, तो वो क्यों नहीं मेरे कर्म के भागीदार बनेंगे। बोला, ऋषिवर ये कार्य मैं अपने परिवार के लिए करता हूं, वो अवश्य मेरे कर्म में भागीदार बनेंगे। ऋषिवर बोले, रत्नाकर जाओ उनसे पूछ कर आओ। रत्नाकर डाकू को लगा ये ऋषि जो है कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, इसके पीछे कोई अर्थ तो होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को बेवकूफ बना रहा हो, मैं घर में पूछने जाऊं पीछे से भाग जाए। रत्नाकर ने ऋषिवर को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और अपने घर की ओर चला गया। घर जाके अपने वृद्ध माता पिता के चरणों में झुक के उन्हें प्रणाम करने के पश्चात पूछा, मैं चोरी का काम करता हूं, मैं डाका डालता हूं, मैं लोगों को लूटता हूं, उससे मुझे पैसे मिलते हैं, संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, उससे हमारी जीविका चलती है। मैंने सुना है ये कार्य अच्छा नहीं है, ये पाप कार्य है, पाप कार्य करने से मुझे पाप का फल मिलेगा, और ये मैं कार्य किस लिए करता हूं, आप सभी के लिए, क्या आप मेरे इस कार्य के, इस कर्म के भागीदार बनेंगे। रत्नाकर ने यह प्रश्न टू दी पॉइंट किया। माता पिता बोलते हैं, बेटा जन्म से लेके तुझे हमने बड़ा किया है, तेला लालन पालन किया है, अपने पेट की रोटी काट के हमें तुमको दी है, आज हम वृद्ध हो गए हैं, हम काम करने की क्षमता नहीं रखते, हमारे हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं, हम चल फिर नहीं सकते, आज ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम हमारी सेवा करो, लेकिन हां तुम किस प्रकार से धन कमाते हो ये तुम्हारी समस्या है, दिस इज योर प्रॉब्लम, और हम तुम्हारे इस दुष्कर्म में भागीदार नहीं बनेंगे। रत्नाकर हैरान हो गया, दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास गया, अपने बच्चों के पास गया, यही प्रश्न दोहराया, मैं लूटमारी का कर्म करता हूं, मैं पाप कर्म करता हूं, क्या तुम मेरे कर्म में भागीदार बनोगे। कहते हैं पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया। रत्नाकर एकदम अचंभे में आ गया, रत्नाकर को सदमा सा लगा, शॉक लगा, उल्टे पांव दौड़ता हुआ ऋषिवर के पास गया, नारद मुनि जी के पास गया, उनके चरणों में गिर गया, महाराज मुझे क्षमा करें, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं इतने समय से ये पाप कर्म कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये पाप कर्म का फल क्या होता है। मुझे पता नहीं था मैं जिनके लिए पाप कर्म करता हूं वो मेरे कर्म के भागीदार नहीं बनेंगे। हे ऋषिवर मेरा उद्धार कीजिए, हे ऋषिवर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे प्रकाश चोले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखलाइए। असतो मां सद्गमया, तमतो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर मां अमृतम गमया। मुझे असत्य से सत्य क्यों ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश क्यों ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। आपने ये वेदों की प्रार्थना अवश्य सुनी होगी। इस डाकू को ये ज्ञान हो गया जो मैं कर्म कर रहा हूं वो असत्य है, मुझे सत्य की ओर जाना है। ये जीवन भी असत्य है, मुझे सत्य की ओर जाना है। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर बनना है, मुझे ब्रह्म की ओर बनना है, मुझे परमात्मा की ओर बनना है। मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर जाना है। कहते हैं ऋषि ने सोचा ये मेरी शरण में आया है, ये सही मार्ग पे चलना चाहता है, मेरा धर्म बनता है इसको मैं रास्ता दिखलाऊं। ऋषिवर जानते थे ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ज्यादा लंबे लंबे मंत्र श्लोक नहीं बोल पाएगा, शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएगा, इसको मैं ऐसा कौन सा उपाय बताऊं जिससे उसको मुक्ति हो जाए। एक छोटा सा मंत्र दिया, उस मंत्र को आप भी पढ़ सकते हैं। वह मंत्र आज भी वैलिड है, हजारों साल से मंत्र चलता आ रहा है, इसको आपने हजारों बार अनेकों बार सुना होगा, लेकिन कभी ठीक से जपा नहीं होगा शायद। ऋषिवर बोले रत्नाकर ये मंत्र है, छोटा सा दो अक्षर का मंत्र है, तुम इसको जपते रहो। मंत्र था राम राम राम, केवल राम राम जपते रहो, तुम्हारे सारे पाप धुलते जाएंगे। रा का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि क्या करती है जलाती है, अग्नि क्या जलाती है आपके पापों को जला देती है। मां का अर्थ है अमृत, जब पाप जल जाते हैं तब आपके भीतर अमृत की धारा बहती है। डाकू पढ़ा लिखा नहीं था, राम शब्द को भी ठीक से नहीं बोल पाया, ऋषिवर चले गए मंत्र को देकर, ये डाकू वहीं पर बैठ गया पालती मार के, राम की जगह मरा बोलने लग गया, मरा मरा, लेकिन भावना पवित्र थी, ध्यान पवित्रता की ओर था। मरा 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 बोलते बोलते भी शब्द उल्टा हो गया, मरा से राम बन गया। द कॉन्स्टेंट रेपिटिशन बिकेम द सेल्फ करेक्टिंग, बारंबार एक शब्द को जो उल्टा बोलने से वो अपने आप शुद्ध हो गया, सही हो गया। मरा 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 मरा, आप बोल के दीजिए, मरा 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 राम 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 राम, अपने आप राम बन गया, अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठा। कई वर्षों तो कहा जाता है वहीं पर बैठा रह गया, समाधि लग गई। ना दिन का पता, ना रात का, ना मौसम की कोई भनक, ना भूख प्यास सताती थी, केवल जाप चलता रहा राम नाम का। शरीर के आसपास मिट्टी इकट्ठी हो गई, मिट्टी का ढेर लग गया, पूरा शरीर मिट्टी में दफनाई हो गया, दफन हो गया, दब गया। असल में वो मिट्टी नहीं थी, उसमें दीमक लग गई, जैसे लकड़ी में आप देखते हैं दीमक लग जाती है, वो मिट्टी थी, जैसे मिट्टी बोलते हैं साधारण भाषा में, लेकिन वो दीमक थी। दीमक अंग्रेजी में बोलते टर्माइट। काफी समय के बाद नारद मुनि कोई कारणवश उसी वन से दोबारा गुजर रहे थे। उनको दूर दूर से एक वाइब्रेशन मिली, एक एनर्जी मिली, एक शक्ति का एहसास हुआ, एक ध्वनि सुनाई पड़ी। आप जरा कल्पना कीजिए, आपके पास मोबाइल फोन है, आप कहीं जा रहे रास्ते में देखते हैं इंटरनेट स्टेशन, वायरलेस स्टेशन, वायरलेस का एक सिंबल लगा होता है जिससे मालूम होता है यहां पर वायरलेस है, यहां पर वायरलेस इंटरनेट अवेलेबल है। आपको दिखते नहीं है तरंगे कुछ भी, लेकिन वहां पर वायरलेस स्टेशन है। अगर आप अपना मोबाइल फोन, अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर, अपना टैबलेट ऑन करेंगे तो वो पकड़ लेगा वायरलेस को, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, एक एंटीना है, एंटीना जो है साउंड वेव्स बाहर फेंक रहा है, रेडियो स्टेशन में बात हो रही है, वो गाना आप सुन रहे हैं, वो बातें आप सुन रहे हैं, वो एंटीना के द्वारा बाहर प्रवाहित हो रही हैं। उसी प्रकार से रत्नाकर नामक डाकू कई वर्षों से बैठा हुआ राम नाम का जाप कर रहा था, वो राम नाम की धाराएं प्रवाहित हो रही थी। जिस प्रकार से वायरलेस सिग्नल आ रहा होता है, उस प्रकार से भगवान नाम की, राम नाम की धारा, राम नाम की शक्ति चारों ओर प्रवाहित होने लग गई। नारद मुनि जब वन में जैसे प्रवेश करते हैं, उनको वो आवाज सुनाई देती है, राम 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 राम। ये कौन है, ये कौन है जो इतनी भक्ति से, इतनी साधना से, इतने फोकस्ड माइंड से, केंद्रित मन से, इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी शक्ति के साथ, इतनी एनर्जी के साथ, इतनी भावना के साथ, इतनी डिवोशन के साथ इस मंत्र का जाप कर रहा है, ये कहां से आवाज आ रही है? ऋषिवर ने आगे देखा कि एक मिट्टी का ढेर है, वह एकदम पहचान गया, ये तो वही डाकू तो है, यहां बैठ गया था मन जपने के लिए, अभी तक बैठा हुआ है, दीमक लग गई है। उन्होंने दीमक को तोड़ा ताकि इस डाकू को बाहर निकाला जाए। ध्यान दीजिएगा भाइयों और बहनों, संस्कृत भाषा में दीमक को बाल्मीक बोलते हैं। नारद मुनि ने बाल्मीक को तोड़ा, वहां से मानव को बाहर निकाला, उसका नाम पड़ गया बाल्मीकि। वो एक डाकू से ऋषि बन गए। उन्होंने रामायण को लिख डाला, जिसको आज भी आप पढ़ते हैं। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन परिवर्तित हो गया। एक डाकू एक महान आत्मा बन गई, एक डाकू एक महान ऋषि बन गया, वाल्मीकि महर्षि, जिनके आश्रम में माता सीता भी लवकुश के साथ रही थी कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। अब आप कल्पना कीजिएगा, विचार कीजिएगा, डाकू रत्नाकर को केवल एक ऋषि मिला, केवल एक व्यक्ति ने मार्गदर्शन किया, केवल एक व्यक्ति ने छोटा सा मंत्र दिया, राम, उनका उद्धार हो गया। हमारा और आपका उद्धार कौन करेगा? कि हमने कभी ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं किए हैं, हमने हजारों ऋषि मुनियों के दर्शन किए हैं, हमने हजारों के प्रवचन सुने हैं, हमने सैकड़ों शास्त्र पढ़े हैं, अनेकों प्रवचन सुने हैं, अनेक गोष्ठियों में गए हैं, अनेक तर्क किए हैं, लेकिन हमारे अंदर परमात्मा को पाने की भावना नहीं जागी, हमारे अंदर अपना उद्धार करने की भावना नहीं जागी। विचार कीजिएगा, अगर आप अपना उद्धार नहीं करेंगे कोई दूसरा नहीं कर सकता, और आपके मरने के बाद बिल्कुल नहीं कर सकता। ये मत सोचिएगा आपके मरने के पश्चात आपके बच्चे आपका तर्पण करेंगे, आपके नाम से दान करेंगे, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ये पहले करवा बैठते, हजारों साल वर्षों तक, हजारों वर्षों तक हिमालय में बैठ के तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी? आपको अपना उद्धार आज ही करना होगा। राम, पाप जल रहे हैं, रात है, महासमृत की धारा बह रही है, लेकिन मन के अंदर भावना लानी है। समाधि की बात तो छोड़िए, आधा घंटा बैठ के जाप करना पड़ जाए, मन यहां से वहां भागता है, इसलिए कहा गया मंकी माइंड। राम नाम को जपने से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, बुद्धि के अंदर सात्विकता के बीज उत्पन्न हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सात्विकता का रास्ता नजर आता है। जब एक डाकू साधु बन सकता है तो आप और हम क्यों नहीं बन सकते? विचार कीजिएगा, हम पाप कर रहे हैं क्या? हमें मालूम नहीं है हम पाप कर रहे हैं? वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू थे, उनको तो पाप पुण्य की परिभाषा नहीं मालूम थी। उन्हें एक बार बताया गया ये अब गलत काम कर रहे हैं, ये पाप है। हम दिन भर में हजारों कर्म करते हैं, उसमें से कितने पाप कर्म होते हैं? कभी विचार किया, कभी एनालाइज किया, कभी विश्लेषण किया इस बात पर, कभी भीतर झांक कर देखा? प्रत्येक पाप बीज रूप में, बीज का अर्थ इन थॉट्स, विचार में भी अगर पाप आ जाता है या कोई पाप विचार उत्पन्न होते हैं, वह भी आपके लिए खतरनाक है। पाप विचार में आया तो कहीं ना कहीं शब्दों में भी आ जाएगा, शब्दों में आया कहीं ना कहीं आपके कर्म में, एक्शन में भी आ जाएगा, कर्म एक्शन में आया कहीं ना कहीं आपके चरित्र में, आपके कैरेक्टर में भी आ जाएगा। अगर आपके चरित्र में आ गया, कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी ये डेस्टिनी बन जाएगी, आपका ये भाग्य बन जाएगा। ये एक कुकर्म आपको दुष्कर्म क्यों ले जाएगा? एक खराब विचार आपको या आपके कैरेक्टर को खराब कर सकता है, आपके चरित्र को खराब कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि श्रीमन रामचरित्र मानस का पाठ किया कीजिए। रामचरित्र मानस, जिसमें राम के चरित्र की व्याख्या है, राम के कैरेक्टर की व्याख्या है, एट इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, एट सोसाइटी लेवल, इंडिविजुअल लेवल, किस प्रकार से धर्म के रास्ते पे चले, किस प्रकार से धर्म की रक्षा करी। आज के बच्चे अपने मां बाप की बात को नहीं सुनते हैं, इस बात से आप नकार नहीं कर सकते। माँ बाप की बातें कड़वी लगती हैं, माँ बाप की बातें लगती हैं बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं, बेकार बातें कर रहे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है. माय पेरेंट्स आर ओल्ड फैशन, माय पेरेंट्स आर ट्रेडिशनल, माय पेरेंट्स डू नॉट नो एनीथिंग. जब बड़े हो जाते हो फिर यही बात आपको लगती है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं समझते. भगवान राम चाहते तो अपने पिता श्री को चैलेंज कर सकते थे, चुनौती दे सकते थे कि मैं वन नहीं जाऊंगा. आई हैव ए राइट टू बिकम द किंग ऑफ अयोध्या. हालांकि महाराज दशरथ ने कभी भी अपने जीप से नहीं बोला, अपने मुख से नहीं बोला कि राम वन की ओर जाओ. राम को पता लगा कि माता कैकेयी ने यह वचन मांगा है कि 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास की ओर जाएं और भरत वहां का राजा बने. राम जी ने 14 वर्ष का वनवास लिया ताकि उनके पिता के शब्दों का मान रहे. टू ऑनर हिज फादर. विचार कीजिएगा जरा आप. राम नाम को जपने से आपकी जीभ मीठी होती है. जीभ मीठी होगी. वेदों में कहा क्या गया, सत्यम ब्रूहत स्पीक द ट्रूथ. ये एक मॉरल वैल्यू है, एक नीति है. प्रियम ब्रूहत स्पीक सॉफ्टली एंड लविंगली. ये सोशल वैल्यू है. ना ब्रूहत सत्यम अप्रियम. वो बात नहीं बोले जो मीठी नहीं है, जो बात कड़वी हो. ये स्पिरिचुअल वैल्यू है. बहुत रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर. बच्चों को कुछ रामायण के श्लोक दिए गए, बोला बेटा रोज पढ़ना. और कुछ बच्चों को बोला, कुछ नहीं बोला गया. जो बच्चे राम का श्लोक, राम नाम का माला पढ़ते रहे, 20-21 दिन के बाद उनके स्वभाव में बदलाव आ गया. आप संयम देख रहे हैं. इतिहास इस बात का साक्षी है कि रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गया. अगर ये डाकू ऋषि बन सकता है तो हम और आप क्यों नहीं बन सकते. उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए सेल्फ एफर्ट चाहिए. उसके लिए सबसे पहले आपके मंदिर अंदर ये भावना चाहिए कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू गेट टू गॉड हेड. मुझे अपने सारे पाप कर्म इसी जन्म में साफ करने हैं, कहीं ऐसा ना हो अगले जन्म में मैं तड़पता रह जाऊं. और आपका समय है अब, नॉट आफ्टर रिटायरमेंट. आपका समय है आज, राइट नाउ. योर टाइम बिगिन राइट नाउ. आप वाल्मीकि बन सकते हैं. आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर पोटेंशियल है. एवरी लिविंग बींग हैज द पोटेंशियल टू बिकम डिवाइन, टू रियलाइज द डिविनिटी विद इन. हमारे अंदर परमात्मा वास करते हैं, लेकिन हम उससे अभिन्न हैं. हम उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं. इसलिए आप कोशिश कीजिए, आज शुरू कीजिए राम नाम की माला. केवल 108 बार राम 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 बोलते जाइए और फिर देखिए कुछ दिन